बोलते बनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ ओ
ओम शांति, ओम शांति। आज 27 जून साकार बाबा की मुरली है, आज सद्गुरु वार भी है, हम प्यारे बाबा को भोग भी लगाएंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे योग बल से अपनी आयु बढ़ाने की कोशिश करते हो, पुरुषार्थ करते हो, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो प्यार अभी हमें बाबा से मिल रहा है, वो जो सारे कल्प में नहीं मिल सकता, उस प्यार को हम पाएं। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि जो भी हम बाबा से सुनते हैं, हमारी दिल होती है कि हम सब कुछ जान जाएं, क्योंकि अगर शरीर छोड़कर चले गए तो फिर बाबा भी छूट जाएगा। जो आत्माएं चली गई ड्रामा में, वो उनका पार्ट था या उनकी तकदीर कहेंगे। फिर दूसरी बात बाबा ने कही, ब्रह्मा को इतनी भुजाएं दिखाते हैं, विष्णु शंकर को नहीं दिखाते, क्योंकि ब्रह्मा के जितने भी एडॉप्टेड बच्चे हैं वो सब उनकी भुजाएं हैं, इसलिए सहस्त्रों भुजाएं ब्रह्मा को दिखाई गई। फिर सतयुग में योग बल से जन्म होता है, पर बाबा ने कहा कि वहां कायदा है, क्योंकि 150 वर्ष की आयु है तो फिर आधी से ज्यादा उम्र के बाद पहले बच्चे का जन्म होता है और फिर 8-10 साल के बाद बच्चे का जन्म होता है, और पहले से ही जाने वाले को भी पता होता है कि मुझे पुनर्जन्म लेना है और इस शरीर में जाकर के मैं बच्चा बनूंगा, और पिता को भी बाप को भी पता होता है कि हमारे घर में बच्चा आने वाला है, ये साक्षात्कार होता है। तो बाबा ने कहा ये राज की बातें हैं जो बाबा सुनाते रहते हैं। और भी बाबा ने कहा कि जो भी धर्म की आत्माएं हैं उनके सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं, तो समय अनुसार वो अपने सेक्शन से आते हैं और जब वापस जाने का समय होता है तो भी वो आत्माएं अपने ही सेक्शन में जाकर के रहती हैं। फिर ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि शुरू शुरू में मुझे भी ख्याल में नहीं था कि स्वयं बाप आकर के मुझ में प्रवेश करेंगे, तो जब मैं किसी को देखता था तो मैं देखता था उनको कशिश होती है, तो मुझे आश्चर्य होता था कि ये क्या होता है। फिर बैठे बैठे लोग ध्यान में चले जाते थे, फिर सोचा कि ये सब समझने के लिए मुझे एकांत चाहिए ना, तो कहाँ जाऊं, तो बनारस जाता हूँ। फिर बाबा बनारस में गए, तो ऐसे बाबा ने अपना अनुभव भी सुनाया है। तो सुनते हैं आज की प्यारे बाबा की मीठी मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है, शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? हैं क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें। बाबा जो भी प्राप्तियां हमें करा रहे हैं वो सब वर्षा हम बाबा से पाएं, ऐसी हम बच्चों के दिल हैं। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, वो ईश्वरीय प्यार, रूहानी प्यार, जो निस्वार्थ प्यार बाबा हमें देता है वो तो और कोई दे नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पार्ट था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहां भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है, ये भी सत्संग है, पर भक्ति मार्ग के सत्संग जैसा सत्संग नहीं है। यहां किसका संग मिला हमको, किसका संग मिला? स्वयं भगवान का संग। तो सत का संग मिला है। तो बाबा ने कहा सत का संग तारे। बच्चों के दिल में आता है हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे, अभी यहां बैठे हैं। रात दिन का फर्क भासता है, हाँ, उन सत्संगों में और इस सत्संग में रात दिन का फर्क है। यहां पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। बाबा हमें प्यार करते हैं और हम बाबा को, जैसे बाबा कहते हैं मेरे दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है, तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्मा हैं, न कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर, क्योंकि आत्मा चेतन है, आत्मा ही बोलती है मुख के द्वारा, तो आत्मा कह सकती है, शरीर थोड़ी कहता है। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए। गुरु तो किए ना सभी ने, जन्म जन्मांतर किए हैं। आजकल फिर फैशन पड़ा है साईं बाबा, मेहर बाबा। साईं बाबा को भी कितना पूजते हैं, उनके भी मंदिर बनाते हैं। वह भी सब जिस्मानी हो गए, जिस्मानी गुरु हैं। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है कौन सा प्यार? रूहानी प्यार। रात दिन का फर्क है, हमारा आत्मिक स्नेह है, रूहानी स्नेह है। तो बाबा ने कहा दिन रात का फर्क है, यहां तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। अभी तुम समझते हो बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं, वह सबका बाप है, मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। सभी आत्मा भाई भाई हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, बाबा ने ये हमें समझ दी है। बाबा बुलाते भी हैं हे बच्चों, तो बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम भी रिस्पॉन्स करते हैं। तो बाबा ने कहा यह है बाप और बच्चों का मेला, सच्चा सच्चा कुंभ का मेला, आत्मा और परमात्मा के मिलन का मेला। तो बच्चे जानते हैं ये बाप और बच्चों का आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है, एक ही बार संगम युग पर होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे, बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो, बाबा ने कहा, तुम छोटे तो नहीं हो, बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है वह छोटा बच्चा तो समझ न सके। यहां तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए। बाबा एक साथ सब बच्चों को कह देते हैं। जब बच्चे कहते हैं तो सभी को बाबा ने कहा, सब आत्माएं घर से यहां आती हैं पार्ट बजाने। कौन कब पार्ट बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में है। बाबा ने बताया अलग अलग धर्म की आत्माएं कब कब आती हैं। सबके सेक्शन अलग अलग हैं, जहां से आते हैं। फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। ये भी नोंद है, सब बना बनाया ड्रामा है ना, बाबा कहते हैं। तो ये भी नोंद है कि सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। बाप किसको भेजते नहीं, बाबा किसको भेजते नहीं, ये ऑटोमेटिकली ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। जब तक बौद्ध धर्म स्थापन नहीं हुआ है तब तक वो आत्माएं सब परम धाम में ही रहने वाली हैं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबर वार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की तो बात नहीं, योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर यह शरीर लेगी, वहां पर पूरी समझ रहती है, इसीलिए उसको अमर लोग कहते हैं, क्योंकि मृत्यु का भय नहीं होता, पहले से ही मालूम होता है। बाबा ने कहा, बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर ये शरीर लेगी, मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वह बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है ना। माँ बाप को पहले से ही साक्षात्कार होता है कि अब बच्चा आने वाला है। वह अपने लिए समझते हैं हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहां का कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा, वहां तो सब रेगुलर चलता है ना, वह तो आगे चल महसूस होगा। सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा, हाँ यहाँ तो चाइल्ड मैरिज हो जाती है। आप तो फिर भी सरकार ने कानून बना रखे हैं, तो फिर भी लोग डरते हैं, नहीं तो आज से 50 साल पहले तो बहुत कॉमन था, छोटी उम्र में शादी कर देते थे, फिर छोटी उम्र में ही बच्चे हो जाते थे। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा, जैसे यहाँ होता है नहीं। वहां आयु 150 वर्ष की होती है, तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, यानी 80 साल की उम्र में, आधा लाइफ से थोड़ा आगे, लगभग इतना ही हो गया। उस समय बच्चा आता है क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, एक बेटा एक बेटी ये भी फिक्स है। तो बाबा ने कहा एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चा ही वारिस गद्दी पर आएगा। तो बाबा ने कहा पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल, 8-10 वर्ष देरी से आएंगे, इतना अंतर होगा। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है, कैसे वहां की रस्म रिवाज है। ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रसम रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे, और सब तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं। बाबा कहते हैं योग बल की पैदाइश है, तो कल्प कल्प जो है तो वो कोई नई बात नहीं है। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहां कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो। हर एक बात तुमको नजदीक देखने आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने पाठ बचाया है। अभी तुमको समझ मिलती है जो ही तुम साथ ले जाएंगे, आत्मा अपने साथ ज्ञान के संस्कार ले जाएगी। तो बाबा ने कहा यही तुम्हारे साथ सतयुग में जाएगा। वहां की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अर्जुन तुम अल्फबे पढ़ते थे, पूरा ज्ञान भी नहीं था। जैसे शुरू शुरू में बाबा ने कहा साक्षात्कार तो उसी समय हुए ना उम्मदली में, तब ज्ञान नहीं था, साक्षात्कार से ही बाबा के बन गए। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। सो बाप बैठ सुनाते हैं, वह सब देखने की चाहना तुमको यहां होगी। सब सोचते हम लास्ट तक रहें, जब बाबा साक्षात्कार कराएंगे तो वो पार्ट भी या वो सीन भी हम देखें। तो बाबा ने कहा समझेंगे कहां शरीर न छूट जाए। अब कोई भरोसा नहीं है अचानक और एवर रेडी भी बाबा कहता है। तो बाबा ने कहा सोचते हैं सब कुछ देख कर जाए। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए, और आयु बढ़ानी है तो क्या चाहिए, आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। फिर इतना योग, कम से कम 8 घंटा योग जो बाबा हमें कहता है, इतना हमारा योग का चार्ट चाहिए। जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखें, जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। अब ऐसे तो बहुत बाबा के बच्चे चले गए हैं, वह तो ड्रामा का पार्ट है, तकदीर में नहीं था। ज्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि तुम जितना जितना सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। सर्विसेबल बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं, बाबा ने कल भी मुरली में कहा। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वो याद जमती रहेगी, तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, मुक्ति में मोक्ष में जाने का ही पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम तो हमारे पास मुक्ति में थे ही, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं, यह बहुत लवली ज्ञान है, लवली बनाने वाला लवली ज्ञान है, ऐसा कहेंगे। बहुत लव रहता है बाबा से, कितना लव है बता सकते हैं? तो बाबा ने कहा बहुत लव रहता है, बाप भी है क्योंकि सर्व संबंधी है बाबा हमारा, सर्व संबंधों से लव है, तो वो बाप भी है, टीचर भी है, सत गुरु भी है, सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुख धाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहां भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। बाबा आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट है उनको भी तुम समझ गए हो, तुम कितना खुशी में रहते हो, कितना खुशी में रहते हो। सब खुशी में रहते हैं जो समझते हैं हम हमेशा सदा खुशी में रहते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा 50-50 है, देखो कितनों ने नहीं उठाया, लेकिन सदा खुशी में रहना, संगम युग है ही, बाबा कहता है खुशियों और मौजों का युग है ना। भले माया आती है, समस्याएं आती हैं, वो आएंगे जाएंगे, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। जो भी पार करना है खुशी खुशी, क्योंकि खुशियों के सागर बाप के हम बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम कितना खुशी में रहते हो, बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए, हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूं। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए, सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है। दुनिया के संबंध तो स्वार्थ पर है ना, स्वार्थ पूरा होता है तब तक प्यार है, स्वार्थ खत्म तो प्यार भी खत्म, तो दुख भी देते हैं। जो प्यार करते हैं वो कभी नफरत भी कर लेते हैं, जो कभी सम्मान करते हैं वो अपमान भी कर देते हैं। तो बाबा ने कहा दुख देते हैं, यह है ही दुखदाई संतान। और बच्चों से कितना दुखी रहते हैं माँ बाप, तुम दुखी होते दुखी ही बातें सुनते आए हो। अब बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। सिर्फ समझाया ही नहीं है, बाबा ने हमें चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं। ऐसा है, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाप से ही हमारे सर्व संबंध हैं। आत्मा को ही समझाया जाता है, हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। हमें बाबा ने इतना सुख दिया है, तो फिर हमें औरों को भी सुख का रास्ता जरूर बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं। जब हम दूसरों को बाबा का बनाते हैं, तो बाबा ने कहा तुम पर भी कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। इसीलिए सेवा से दुआएं मिलती हैं। जब और आत्माओं को सुख का रास्ता मिलता है, तो तुम समझते हो इन्हें भी ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। यह फिर हमको पैगाम देते हैं, ब्रह्मा बाबा फिर हमको सिखाते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी सबको ज्ञान सुनाने जाऊंगा, ये बच्चों का काम है, बच्चे ही बाबा का संदेश सबको देंगे। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। अभी हम समझ गए ज्ञान और भक्ति का अंतर। तो भक्ति तो बिल्कुल अंधश्रद्धा है, किसी का भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं बाबा कहते हैं। तो ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। तुम्हारी दिल में आता है बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमें जगाते हैं। हमारा जो दीवा है उसमें धृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान धृत डाल दीप जगाते हैं। हमारी आत्मा रूपी बैटरी जो है वो लगभग डिस्चार्ज हो गई, तो बाबा आकर के फिर से उसे चार्ज कर रहे हैं, या दीवा जो है वो और ज्ञान धृत डालकर जगा रहे हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है ना। माया हमें बाबा को याद करने नहीं देती, और सब कुछ कर लेंगे है ना, लेकिन बाबा को याद करना सबसे मुश्किल काम है। तो बाबा ने कहा फिर क्या होता है, माया घड़ी घड़ी फुला देती है और कट उतरने की बजाय चढ़ती जाती है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो कट चढ़ती जाएगी, बल्कि बाबा ने कहा जितनी उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी विकर्म किए तो अभी संगम युग में कर्म की गति बदल जाती है, एक का 100 गुना है ना, तो फिर कट और चढ़ जाती है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है। तो बाबा कहते हैं ना, विश्व का मालिक बनना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो इसमें मेहनत है। शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, कितना बाबा पक्का कराते हैं ये पाठ रोज रोज कि सिर्फ आत्मा ही समझना है, आत्मा को ही देखना है। तो बाबा ने कहा हम आत्मा हैं, बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है। देह अभिमान में आएंगे तो कट चढ़ेगी, कभी चढ़ती कभी उतरती, यह चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ा नाजुक रास्ता है, जैसे कहते हैं तलवार की धार पर चलना। तो बाबा ने कहा बड़ा नाजुक रास्ता है, यह होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। चढ़ना उतरना करते करते फिर लास्ट में बाबा ने कहा संपूर्ण बन जाते हैं, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती हैं, इसलिए शरीर को न देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। याद किसको करना है, कर्म किया तब तक कर्म इंद्रियों का आधार लिया, फिर शांति धाम या सुख धाम पर में बुद्धि लगी रहे। बाबा ने कहा भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है, वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवता कभी गंदी चीज थोड़े ही खाते होंगे, विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको चार भुजा होनी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा चार भुजा तो है ना, अगर कोई बच्चा चार भुजा वाला जन्म ले तो डॉक्टर फिर उसको अबनॉर्मल समझते हैं, उसकी दो भुजा निकाल देंगे, तो वहां तो चार भुजा दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में दो भुजा वाले होते हैं, समझते नहीं कि चार भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान। चार भुजा दिखाना बाबा ने कहा बेहद का अज्ञान है, परंतु भक्ति मार्ग में उनको चार भुजा दी है। ब्रह्मा को भी दो भुजाएं हैं, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती फिर उनको मिलाकर चार भुजा दी है। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, वह तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। ये भी भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा उल्टा कर दिया है। जितने बच्चे एडॉप्ट होते जाते हैं उतनी इनकी भुजा बढ़ती जाती है, ब्रह्मा बाबा की भुजाएं, बच्चे सब उनकी भुजाएं हैं, माना सहयोगी हैं, नई दुनिया की स्थापना में बाबा के सहयोगी हैं, उनको भुजाओं के रूप में दिखाया है। ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं कहते हैं, विष्णु व शंकर की नहीं कहेंगे, ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं। भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ नहीं, बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम कहती हो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा तुम शिव को क्या समझते हो? बाबा ने कहा पूछो उनसे तुम शिव को क्या समझते हो। अभी तुम समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। वो तो जानते नहीं लेकिन फिर भी शिव की पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते हैं माम एकम याद करो। तुमने बुलाया भी है, बुलाया है हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते ही रहते हैं बाबा को, सभी पुकारते हैं, केवल हमने ही नहीं पुकारा। तो बाबा ने कहा पतित पावन सीता राम ये भी गाते रहते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। ये महात्मा गांधी जी की फेवरेट प्रेयर थी। तो बाबा ने कहा बाबा को थोड़े ही मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी मालूम था, कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। कहते ना सपने में भी नहीं सोचा था, तो कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे ये क्या होता है, बाबा को भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या होता है, मैं किसको देखता हूं तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है, ये क्या होता है। तो शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। है ना, बाबा सत्संग कराते थे ना शुरू शुरू में, तो फिर जो भी बाबा के सामने बैठे होते थे ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार करते थे। तो आश्चर्य में पड़ गए ये क्या है, क्योंकि ये तो जैसे जादूगरी वाली बातें। तो इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा कहाँ जाऊं। हाँ, जैसे फिर बाबा गया बनारस कश्मीर, कश्मीर भी काफी समय फिर बाबा जाकर रहे। तो बाबा ने कहा कहाँ जाऊं, अच्छा बनारस जाता हूं। यह उनकी कशिश थी ना, शिव बाबा की कशिश थी, बाबा करा रहा था सब। जो इसको भी कराते थे इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। उन विचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा, वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। वहां बाबा ने कहा बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता था, माना सब ट्रांस की स्थिति में बाबा जैसे उनसे करवाते थे। जो शुरू शुरू में बाबा ने पुरुषार्थ किया और फिर ये जो अपना ड्रामा का जो सृष्टि चक्र का चित्र बना वो फिर ऐसे ही बाबा ने ड्रॉ कर करके निकाला। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहां उड़ गया हूं। जैसे फिर नीचे आ जाता था कुछ पता नहीं क्या हो रहा है ना, कुछ अलग अलग जैसे अलौकिक अनुभव बाबा को उस समय होते थे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, जो हमारी दादियां थी उन्होंने तो बहुत कुछ देखा है। तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा, है ना। हम में से कोई, आप में से कोई है जिसको साक्षात्कार हुआ है, जो यहाँ बैठे हैं बाबा के पास साक्षात्कार के बाद आए, ऐसे कोई है? एक दो हैं अभी भी, तो ऐसे अभी भी किसी किसी को होता है, पर उस समय तो लगभग सभी को, 90% जितने भी ओम मंडली में आए सबको साक्षात्कार बाबा ने कराए। तो बाबा ने कहा कि तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा, फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे। हाँ, बाबा ने वायदा तो किया है साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। लेकिन फिर उसके लिए क्या चाहिए, वो सब देखने के लिए क्या चाहिए, क्या कहा बाबा ने, योग बल। हाँ, योग बल से ही फिर अपनी आयु बढ़ानी है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा का सार, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है, दूसरा है अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। वरदान, अलबेले पन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने की बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही हैं, मतलब इतना कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस है ना, कि हम तो बाबा की मदद के पात्र हैं ही हैं, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं कि अगर हमने हिम्मत का एक कदम नहीं बढ़ाया तो बाबा की मदद नहीं मिलेगी, तो एक कदम तो उठाना ही है। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तू आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। आज का अव्यक्त इशारा, सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्म योगी आत्मा हो ना, सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है तो कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा कर्म योगी आत्मा हो ना, कर्म और योग कंबाइंड है ना, सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले। सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप सदा हर बच्चे के प्रति यही शुभ आश रखते कि यह विजय माला का मनका बने। तो ये आश कैसे पूरी करेंगे? बाबा ने कहा इसके लिए कंबाइंड स्वरूप से सेवा करो। तो बाबा के साथ कंबाइंड शिव शक्ति स्वरूप, जो कंबाइंड स्वरूप, और कर्म योगी, कर्म में भी योग, ये कंबाइंड स्वरूप की सेवा करेंगे। ओम शांति। आदरणीय शशि दीदी।